आज हमने 28 नंबर आय से शुरू करना है, लेकिन 28 नंबर आय का जो मजमून है उसके लिए पीछे से थोड़ा 26 नंबर आय से जो के चलते हैं। पीछे की बात चली थी कि युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम्हारे लिए वाज़े करें, का तर्जुमा मैंने किया था कि तुम्हारे लिए बयान करें। अरे अल्लाह ताला अपने अकाम लफ्जों में बयान कर ले, वयादियकुम सुनन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले कौमें गुजरी हैं या लोग गुजरे हैं उनके तरीकों की तरफ हदायत फिर, वह हमें पुराने अम्बिया की जो मिलतें हैं उनके साथ जो उनके लिए अल्लाह ताला ने तरीके बताए थे या उनके लिए जो शरीयत बताई थी उसके साथ में जो थी, तो सुनन करा थे उनके तरीके जो थे जो पुरानी उम्मतों के पहले भी लोग गुजरे हैं उनके तरीके। इससे ये फायदा होगा कि हम जो जब हमें शरीयत दी जा रही है तो ये हमें मालूम है कि हो ये तो अल्लाह ताला की पुरानी शरीयतों के मुताबिक है, तो इसलिए हमें अजनबीयत महसूस नहीं होगी, उसके साथ लगाव होगा, क्योंकि इंसानी में ये लगाव पहले से मौजूद होता है। माँ अल्फिन आ रही आबा ना रो रैश कमशु जुमला था कि हम तो उसी दिन पर जो हमारे अबा और अजदाद कर ही वो जो तस्कीन मिलती है आगे को उसको भी अदा करना है, यहाँ महदूज रखा है कि आबा का दीन जो सही होता है उसको तो अपनाना चाहिए, जो गलत कर आते हैं जो इजाफा तहरीफात हैं उनको नहीं आना चाहिए। तो भैया दिया कुम सुनन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो तुमसे पहले लोगों के जो तरीके हैं उनकी तरफ तुम्हें अदायत है, तो दोबारा तो अल्लाह के हुक्म की जो अहमियत है उसके लिहाज से हम उसमें मानते हैं। तो पहली बात में ये अहमियत बयान दी है कि ये अल्लाह के अपने अल्फाज में होगा, कई दफ़ा मैंने अपना नजर बयान किया है कि हमारा यही होता है उसके तीन दायरे, एक अल्लाह का बयान कर दो या अल्लाह के रसूल का बयान कर दो,
वो ये लियुबय्यिना लकुम के अल्फाज में होगा कि अल्लाह ने खुद बयान कर दिया। ये पहला दर्जा है हदायत का, क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं होता सिवाय इसके कि हम गलत समझ जाएं, लेकिन आम तौर से जुबान मुबीन होती है, वाज़े अल्फाज में होता है तो हम उसको समझ जाते हैं। तो जो अल्लाह के अपने अल्फाज हैं, अल्लाह की अपनी बात है वो, या अल्लाह के रसूल की कह लीजिए, अल्लाह और रसूल की अपनी बात, ये सबसे ज़्यादा सही तरीन बात होती है, इसी को हम असल में हदायत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा दर्जा उन बातों का होता है जो हम अल्लाह की बातों में से इस्तंबात करते हैं, रसूल की बातों में से इस्तंबात करते हैं, डिराइव करते हैं। ये जो इस्तंबाती बातें होती हैं इनका दूसरा दर्जा होता है, ठीक है, यानी अपनी इस्तंबात किए हुए जो हमने किए होते हैं वो हमारा, ये पहला दर्जे की ये हदायत होती है, दूसरे दर्जे की ये हदायत होती है कि अपने कोई इस्तंबाती आरा जो है हमारी इस्तंबात करदा आरा, यानी वो खुदा की लफ्ज़ नहीं होते, खुदा की बात नहीं होती, बल्कि हमने उसमें से निकाला होता है। जैसे मैंने अल्लाह ताला यहाँ कहा है कि पहले लोगों के तरीकों पर तुम्हें चलाने उनकी हदायत देने के लिए, तो ये तो लफ्ज़ों में बात बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने अपनी जो सूरह निसा में शरीयत बयान हुई है उसको कहा है कि ये पुरानी कौमों का तरीका भी है। लेकिन अब मैं इसे इस्तंबात करूँ कि अल्लाह ताला भी पुरानी शरीयतों की इत्तबा करवाते हैं, अब ये मेरा इस्तंबात होगा, ठीक है, तो ये दूसरे दर्जे की बात हो जाएगी। तीसरे दर्जे की बात ये होगी कि अब इस इस्तंबात करदा बात में से फिर मैं कोई नई बात निकाल लूँ। तो मैंने अब मिसाल के तौर पर ये बात निकाली कि अल्लाह ताला भी पैरवी करवाते हैं पुरानी उम्मतों की, तो इसका मतलब है कि पुरानी उम्मतें सारी की सारी दुरुस्त हैं, ठीक है, ये मैंने नतीजा निकाल लिया। तो अब ये नतीजा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो अगली बात इस इस्तंबात करदा बात में से नया इस्तंबात, और ये चलता चला जाता है, यानी आप 200 इस्तंबात, पहले ये बात निकाली फिर ये बात निकाली फिर ये फिर ये फिर ये, तो वो सारी की सारी बाकी जितनी बातें हैं वो कमज़ोर होती चली जाएंगी, सबसे मजबूत बात ये होगी, उसके बाद ये बस ये करीबी इस्तंबात जो है ये भी हदायत के करीब होता है, लेकिन बहरहाल ये इस्तंबात होता है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं होती। तो उसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ये मैं जो कानून दिया है सूरह निसा में या सूरह अल बकरा में वो मैंने अपने लफ्ज़ों में बयान किया है, तो सबसे बुनियादी और सबसे पहले दर्जे की हदायत मेरे ये कवानीन हैं। ठीक हो गया, तो ये एक बात हो गई, इससे तसल्ली होगी कि हम किस कानून को बनाने जा रहे हैं, किस कानून को अपनाने जा रहे हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने लफ्जों में बयान कर दिया। दूसरी तसल्ली हमें यह दी कि ये पुराने तरीके चले आ रहे हैं। अब तरीके यहूद कह रहे थे पुराने तरीके नहीं है, हमारी शरीयत और है, तुम लोगों की शरीयत और है। तो उसको भी समझ लीजिए कि असल में हर बात के पीछे एक हकीकत होती है। मसलन बुरका पहने, चादर लें, पूरे कपड़े पहने, इन तीनों हुक्मों के पीछे एक हकीकत है, वो हया है। ठीक है, तो हया तमाम अंबिया की उम्मतों का तरीका रहा है, खा वो लिबास पहन कर करते हों, खा दुपट्टा लेकर करते हों, खा टोपी पहन कर करते हों, खा जुराबें और दस्ताने पहन कर करते हों, वो सारे के सारे तरीके होंगे, लेकिन पीछे हकीकत क्या है? हया। तो अब अल्लाह ताला यहाँ क्या मुराद ले रहे हैं? तरीकों में कुछ जाहिरी चीज़ें भी हैं और कुछ अंदर की हकीकतें भी हैं, इसको हम कुलियात कह लेते हैं, दीन की बुनियादी बातें कह लेते हैं। तो यूं समझिए कि कुलियात भी अल्लाह ताला पुराने उम्मतों के जो थे वो हमारे पास भी हैं, और कुछ ज़ाहरी अहकाम जैसे दुपट्टा लेना है या चादर लेनी है, तो ज़ाहिर है कि लिबास पहनने का अमल सारे लोग करते रहे और सारी उम्मतों में लिबास फ़र्ज रहा है, तो वो लिबास का तरीका हमें भी दिया गया। ऐसे ही नमाज पढ़ने का तरीका सारी उम्मतों में रहा है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, वो हमें भी दिया गया है। तो इस तरह की चीज़, यतीमों का हक सारी उम्मतों में अहम रहा होगा, अल्लाह ताला ने उसका मज़ीद दोहरा दिया आज। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। अगला था वयतूबु अलैकुम, यानी कानून को, कानून की अहमियत बताने के लिए या हमें कानून को मनवाने के लिए अल्लाह ताला ने पहली बात यह कही कि मेरे अपने अल्फाज में मेरे अपना कानून है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरी बात यह फरमाई कि ये पुराने लोगों का तरीका है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तीसरी बात ये फरमा रहे हैं कि भाई यतूबु अलैकुम, और अल्लाह ताला तुम पर मेहरबानी कर रहा है। ये जो यतूबु अलैकुम है, इसको काफ़ी मुफस्सरीन को इससे मुश्किल पेश आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अनायत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने का बयान कर रहे हैं। असल में यतूबु अलैकुम का मतलब है अल्लाह ताला रहमत कर रहे हैं। ठीक है, और रहमत कर रहे हैं, रहमत करने का क्या मतलब होता है? कि मुश्किलात दूर करनी, सही रास्ता बता देना, सही हदायत दे देना। तो यहाँ पर ये इसी मानी में है कि अल्लाह ताला दरअसल तुम्हें अपना कानून देकर तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फरमा रहे हैं। ठीक, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाले हैं, बहुत हिकमत वाले हैं। ठीक है, ये पहलू मैंने पिछली दफ़ा कम फोकस किया था, क्योंकि अब मैं आयत नंबर जो 28 है उसके हवाले से जोड़ना चाहता हूँ, तो इसलिए ये पहलू ज़्यादा नुमाया कर रहा हूँ। जो पिछले हफ्ते में बातें कर चुका हूँ वो पिछले मजमून के साथ जुड़ कर थी। आगे फरमाया वल्लाहु यरीदु अन यतूब अलैकुम, इसको दोबारा दोहराया कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम पर मेहरबानी करें। यही बात जो ऊपर कही थी यही दोबारा दोहरा दी है, लेकिन इसी से बात समझ में आएगी कि यहाँ हदायत के मानी मैं क्यों ले रहा। अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो तुम पर मेहरबानी करें, यानी तुम्हें हदायत दें, और वो लोग जो शहवात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम हदायत से दूर चले जाओ। तो अल्लाह ताला तुम पर मेहरबानी कर रहे हैं और वो तुम्हें शहवात परस्ती की वजह से तुम्हें दूर ले जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि यतूबु अलैकुम में हदायत देने के मानी में है, और अगल जो शहवात परस्त हैं वो हमें दूर ले जाना चाहते हैं। तो ये अब रहमत का वो पहलू बयान किया कि रहमत दरअसल ये है कि आदमी को उस चीज़ की हदायत मिले जिससे उसको कामयाबी हासिल होनी है। शहवात जो है ये नफ्स परस्ती को कहते हैं, अपनी तमन्नाओं को पूरा करना, जो जिन चीज़ों में लुत्फ आए, मज़ा आए, लज्जत हासिल हो, जिसमें खेल तमाशा हो, अपनी तमन्नाएं पूरी, हमारे जिस्म की, हमारे रूह की, हमारे अज़ा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने का नाम शहवात है। आगे फरमाया युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर नरमी करें, तख़फ़ीफ़ करें। तख़फ़ीफ़ के दो पहलू होते हैं, एक पहलू ये होता है कि कानून नरम दिया जाए, यहाँ पर यह मुराद भी है, कानून नरम दिया जाए। कानून नरम देने का मतलब है कि ऐसा कानून ना दिया जाए जो बहुत सख्त हो, जिस पर अमल करना मुश्किल हो। तो कानून नरम दिया जाए, ये पहलू है, एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू यह है कि कानून तो सख्त है लेकिन उसकी सजा कम रखी है, ये यहां मुराद नहीं है, ये यहां मुराद नहीं है। और तीसरा पहलू ये होता है कि कानून भी नरम है लेकिन साथ ही जो उसके नतायज निकलने हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां आनी है, उसमें अल्लाह ताला ने नरमी रखी है। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ, जो कानून नरम है, अच्छा नरमी जो मैं यहां मुराद दे रहा हूं वो ये कि पुरानी उम्मतों ने कुछ फतवे दे रखे थे और वो फतवे भी शरीयत का हिस्सा बन गए थे, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, जैसे हमारी मिल्लत ने भी बहुत सारी चीजें हराम की हैं। तो ये जो उलमा के फतवे होते हैं, ये दीन जब बन जाता है तो ये बोझ बन जाता है उम्मत के ऊपर। मसलन हमारे दीन में जो रमज़ान जैसे अभी गुजरा है, तो रमज़ान में हम तरावी पढ़ते हैं, तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं की, एक बोझ उम्मत ने खुद अपने लिए पैदा कर लिया कि हर रोज़ेदार के लिए लाजम है कि वह तरावी पढ़े। फिर हमारे ज़माने में आते आते, मेरा ख्याल 3-4 साल पहले से एक और काम शुरू किया हमारे बाज मसाजिद में, वो ये कि तरावी के साथ तर्जमा भी डाल दिया। अब बाज मसाजिद में या बाज जगहों पे ये प्रोग्राम होता है कि आप इशार पढ़ के शुरू होते हैं और 2 बजे तक बैठे हुए हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, तराजम सुन रहे हैं, बीच में चाय के वक्फे भी हो रहे हैं, ये मजीद एक आपने बोझ डाल दिया। तो इसी तरह के फतवे दे देकर हमने इस तरह की चीज़ें ईजाद करके हम बोझ बनाते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला अपने कवानीन जब देते हैं तो पुराने सारे कवानीन मनसूख हो जाते हैं और नए कवानीन जब आते हैं तो वो फितरत के मुताबिक होते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैंने जो कवानीन तुम्हें दे रहा हूँ वो आसानी करने के लिए दे रहा हूँ। तो जो यहूद की शरीयत थी, जो नसारा ने अपने लिए कुछ काम कर लिए हुए थे, या अरबों ने अपने लिए कुछ यहूद से पूछ पूछ के, कुछ उनके अपने उलमा ने फतवे दे रखे थे, उसने दीन को काफ़ी सख्त कर दिया हुआ था। तो अब अल्लाह ताला अपनी शरीयत में, जो कुरान मजीद में दी है, उसमें सीधा सादा साफ कानून दे रहे हैं। इसको नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में 2 लफ्ज़ों में बयान किया, अद्दीन व युसर। जो मैं दीन लेकर आया हूँ वो बड़ा आसान है, अद्दीन व युसर। तो हमारा दीन आसान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसानों के लिए अमल करना मुमकिन है, उसमें कोई ऐसा इजाफी बोझ नहीं है। कुरान मजीद ने सूरह अल बकरा में ये बात बयान किया कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान ज़ाया करने वाला हुक्म नहीं देना चाहते। जब तहवील क़िबला के अहकाम आए हैं तो उसमें यही बात बताई कि मैं कोई ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता जिससे तुम्हारा ईमान ज़ाया हो। तो अद्दीन व युसर में एक पहलू ये होता है कि तंगी ना हो, मुशक्क़त ना हो, और दूसरा पहलू ये होता है कि आदमी अमल करते करते ईमान से ही आतंक हो बैठे, वो इतनी मुश्किल में पड़ जाए जैसे रूहबानियत में होता है, या हमारा जो इस वक्त मौजूदा दीन है जिसमें अगर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो उसके 1,000 आदाब हैं। अहनाफ की नमाज देख लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। खैर लोग करते नहीं हैं पूरी चीज़ों का अमल, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए तंगी का बायस बनती हैं। तो युईदुल्लाहुअन्युखफ्फिफ़ानकुम, तो अल्लाह ताला ये भी, अब कितने मकासद हो गए, कवानीन देने का एक मकसद ये हो गया कि अल्लाह ताला अपने अल्फाज में अपना कानून देना चाहते हैं, पुरानी उम्मतों के जो कुलियात हैं, जो सही दीन है उसकी तरफ हदायत देना चाहते हैं, तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी मेहरबानी करना चाहते हैं हदायत देने के ज़रिए से, और चौथी बात ये कि अल्लाह ताला हदायत देना चाहते हैं लेकिन ये लोग जो शहवात परस्त हैं वो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला तुम्हें इनसे बचाना चाहते हैं, चौथी बात ये हो गई। और पांचवी बात ये कि मैं जो शरीयत दे रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसमें मैं तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता हूँ, सख्त शरीयत को कम करना चाहता हूँ। वह खोले कल इंसान ज़ईफ़ा, अब उसकी दलील बताई है कि मैं तख़फीफ़ क्यों कर रहा हूँ शरीयत में, इसलिए कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। इंसान कमज़ोर है कई पहलुओं से, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से, और मशक्क़तों में अगर उसको डाल दिया जाए, सख्त कवानीन दे दिए जाएँ तो एक हद तक अपनाता है लेकिन फिर उकता जाता है और भागी भी हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत का लिहाज करते हुए कि वो कमज़ोर है तो उसकी शरीयत भी मुनासिब رکھی ہے تاکہ وہ زیادہ سخت نہ ہو جائے. تو اب یہ تین جو آیتیں ہیں 26, 27 اور 28, ان تینوں کے اندر اللہ کے قوانین کی کچھ حکمتیں اور کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جن کو ہمیں اب شریعت پوری میں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح کی آیتوں کی وجہ سے ہمارے امت میں جو فقہا رہے ہیں انہوں نے مصلحت کا قانون بھی دیا ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے مکلف جو ہے, جس نے کام کرنا ہے, جس نے شریعت پہ عمل کرنا ہے, اس کی مصلحت کا بھی لحاظ رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ پھنس جائے اور تم قانون لے کر بیٹھے رہو. تو اصل میں تو فتویٰ دینا ہی نہیں چاہیے, میرے خیال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں بس دین بتانا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہم چیز بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم, ہاں جو میں نے اوپر بات کہی ہے کہ یہ دو باتیں بتا دیں, بس کافی ہے. اللہ کے اپنے الفاظ میں جو بات آ گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں جو بات آ گئی ہے, وہ ویسی کی ویسی بتا دیں, اور جو پہلے کوئی بنیادی سے استنباط ہوتا ہے وہ بتا دیں, بس کافی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم زنا کے قریب, فحشا کے قریب نہ جاؤ, زنا کے قریب نہ جاؤ, تو ہم نے قانون بتا دیا. اب قریب جانے کے کو جو مفہوم آپ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا دیا. تو یہ دوسری بات استنباط ہوگی, پہلی بات ہوگی, اور یہ ہم نے بتا دیا. اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں زنا کے قریب جانے سے کیا کیا حکم دیے ہیں, وہ پردے کے احکام ہیں, وہ بتا دیں, بس باقی اس کا کام ہے. ہم نے بتا دیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دوسری بات بتا دی کہ زنا کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے کیا قانون دیا ہے, وہ پردے کا قانون ہے, وہ بتا دیا. اور یہ بتا دیا کہ قریب جانے کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کی مدد کر دی, باقی وہ جانے, اس کا کام جانے, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے اس کے لیے شریعت نازل کی ہے, وہ اتنا ہی سیانہ ہے جتنے میں آپ سیانے ہیں, بلکہ بعض اوقات وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بس اپنی حقیقت خدا کا دین بیان کرنے کے بعد خاموش ہونا چاہیے. یہاں پر قوانین کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے روکا تاکہ دین کی کچھ حقیقتیں واضح کر دیں, اللہ کی شریعت دینے کے کچھ اصول بیان کر دیں, تاکہ لوگوں کے لیے بات کو سمجھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے. پھر آگے دوبارہ قانون شروع کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, اپنا مال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ اموالکم کی جو اضافت ہے یہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے, خاص طور سے آگے چل کر جہاں پر آئے گی, کہ تم اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تم اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی میرے ہی پیسے ہیں, میں باطل طریقے سے کیسے کھا سکتا ہوں, سوال پیدا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مال. تو ایسے ہی یہاں پر تھا, ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو, تو مطلب ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. تو یہ عربی زبان میں یہ اضافت اس طرح کی ہوتی ہے. تو تم ایک دوسرے کا مال باہم باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے ہر آدمی جانتا ہے کیا کیا مراد, چند مثالیں دے دیتا ہوں. چوری, رشوت, سود, بٹورنا, دھوکہ دینا, فریب, غصب کر لینا, زبردستی چھین لینا, یہ سارے باطل طریقے ہیں. تو ان طریقوں سے جو بھی کسی کا مال کھائے گا وہ باطل ہے, کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے. یہ یاد رکھیے کہ رشوت, چوری, چکاری, دھوکہ, فریب, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. قوم شعیب کا یہی جرم تھا, تو وہ اس جرم کی وجہ سے اللہ کے ایک رسول کو ماننے سے محروم رہ گئے. تو بعض جرائم جو ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چھوٹا سا, اچھا میں نے پیسے 10 روپے کا سودا تھا اس کو 20 روپے کا بیچ دیا, کون سا بڑا کارنامہ کر لیا میں نے, لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے, اس کو واضح رہنا چاہیے. اور ہماری امت جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اس جرم میں اتنی عادی ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ضمیر ہی اس معاملے میں فوت ہو چکا. ضمیر کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ضمیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ختم قلوب ہوتا ہے تو ختم قلوب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ضمیر کی سلیٹ ہے, یہ سمجھیے ضمیر کی سلیٹ ہے, اس پر ہم نے گناہ کریں گے تو دھبا لگ جائے گا, توبہ کریں گے تو یہ دھبا صاف ہو جائے گا. جتنی اچھی توبہ کریں گے اتنی اچھا صاف ہو جائے گا, لیکن اگر ہم توبہ نہ کریں تو یہ دھبا لگا رہے گا. अगला गुनाह करेंगे आगे लग जाएगा, अगला गुनाह करेंगे यहाँ तक कि ये फिर पूरा स्याह हो जाएगा। जब पूरा स्याह हो जाए तो फिर ख़त्मे कुलूब हो जाता है, फिर हम बात सुन रहे होते हैं, हक हमारे सामने नुमाया हो के आ जाता है, हम उसको मानते नहीं हैं। तो ख़त्मे कुलूब, फिर नबी अकरम ने फरमाया कि ईमान के शोबे हैं, तो ईमान के शोबे हैं तो इसका मतलब ज़मीर के शोबे हैं। तो बाज़ औक़ात ख़त्मे कुलूब पूरा नहीं हुआ होता, किसी शोबे में हुआ होता। तो हमारी उम्मत का जो पाकिस्तान में बस्ती है, इसमें झूठ का शोबा यानी सच का शोबा ये ख़त्मे कुलूब हो चुका है। हम झूठ इस फरावानी से बोलते हैं कि लगता है कि सच बोल रहे हैं, और कान पे जूं तक नहीं रिंगती, उसके बाद कोई ख्याल नहीं आता ना तौबा का ना पछतावे का। तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा ख़त्मे कुलूब हो चुका है सच के खाने का। फिर ये चोर रास्ते निकालना, कानून में ऐसे चोर रास्ते निकालना, इसमें भी हम आराम से, मैंने शायद पहले भी बताया था एक दफ़ा कि मैं फजर पढ़ के निकला हूँ तो मेरे आगे एक बहुत परहेजगार नमाजी, कभी मेरा ख्याल है मैंने उनकी तकबीर उला छूट ही नहीं देखी, तो वो हमारी जो जहाँ जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे वहाँ सैर के लिए वो पार्क भी बना हुआ, तो वो बाहर निकले और पार्क में वॉक कर रहे हैं, वो नमाज के बाद वॉक करते, तो मैं उनके पीछे पीछे था, तो अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके कह रहे हैं लो तुम इतनी रिश्वत मांग रहे हो, तो मैंने देखो 200 रुपये में काम करा लिया। तो ये नेक तरीन आदमी की सूरत हाल है, वो फ़ख्र से बता रहे हैं फजर की नमाज के बाद कि जो तुम इतना बड़ा मुश्किल बता रहे हो तो मैंने 200 रुपये में काम करा लिया। ठीक है, इसमें हमारा ख़त्मे कुलूब हो चुका है। तो झूठ चुगली गीबत लेग पुलिंग ये बस समझिए कि हम पूरी की पूरी कौम इस बीमारियों में शिकार है। तो अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए कि जिस गलती के ऊपर मेरे अंदर पछतावा पैदा नहीं होता तो समझ लीजिए कि वो उस शोबे में मेरा ख़त्मे कुलूब हो चुका है। अलबत्ता हम इसको ज़िंदा कर सकते हैं, जब तक पूरे ज़मीर का ख़त्मे कुलूब ना हो तब तक हम एक भी शोबा ज़िंदा रह गया हमारा एक भी, तो हम बाकी भी ज़िंदा कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर आपके पास सच का तो मर गया लेकिन नमाज का शोबा कायम है, तो अब आप नमाज वाले बंदे को हम ये तवज्जो दिला सकते हैं कि तुम सच भी बोला करो, उसका ज़मीर अब ज़िंदा हो जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता सच बोलने की आदत डालेगा तो दोबारा ज़िंदा हो सकता है। तो जब तक पूरा ख़त्मे कुलूब ना हो जाए तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है, आप किसी भी शोबे में ख़त्मे कुलूब ख़त्म कर सकते हैं। तो इन ख़त्मे कुलूब जो है वो किसी शोबे में हो जाए, फिर दूसरे में हो जाए, फिर सारे में हो जाए, तो सब एक शोबा ऐसा है जिसको कुफर वाला शोबा कहते हैं, वो आपके सारे ज़मीर पर दबा लगा सकता है कि आपने बड़ी बड़ी सच्चाइयों को मानने से इनकार कर दिया। तो ये समझिए कि पूरे यानी अबू जाहल का हो सकता है कि सच वाला शोबा सही हो या वादा करने वाला शोबा सही हो, लेकिन नबी करीम सल्लम का इनकार करने के बाद ख़त्म। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि बाज कबीरा गुनाह जो है वो दरअसल इसी तरह के हैं, जब कोई आदमी कत्ल कर लेता है तो वो काफ़ी ज़मीर को कुचल देता है काफ़ी ज़्यादा। तो कबीरा गुनाहों से इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला के इसी सूरह में भी आएगा बल्कि अगली आयत है 31 नंबर, तो इसमें फिर हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कबीरा गुनाह वाहिद वो गुनाह होते हैं कि जो आदमी को ना सिर्फ नेकियां सारी खा जाते हैं बल्कि ज़मीर पर भी सारे पे धब्बा बन जाते हैं। तो अब इसको अल्लाह ताला हमारे ईमान का तकाजा बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो अपने अमवाल एक दूसरे के दरमियान बातिल तरीके से ना खाओ। तो हमें जायज़ तरीके से एक दूसरे से फ़ायदा उठाना है, एक दूसरे का माल इजाज़त से इस्तेमाल करना है, उसकी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना है और जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना है। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम, तो कहते हैं कि बातिल तरीके से ना खाओ, हाँ एक दूसरे की रज़ा से, एक दूसरे की रज़ा से तुम्हारे दरमियान जो तजारत होती है वो ठीक है। अब मेरे लिए 2-3 महीने पहले की बात है, रमज़ान से पहले कह लीजिए, एक अजीब सवाल आया जो मेरे लिए अचंभे की बात थी। वो सवाल ये था कि मैंने सौदा एक चीज़ बेची है, चीज़ 10 रुपये की थी, मैंने 500 रुपए की भेजी है उसको, तो वो राजी होकर गया है, उसने खुश होकर कबूल कर ली है। 10 रुपए की चीज 500 की बेची है और वो राजी था जो लेने वाला था, तो ये मेरे लिए जायज है ना। मैंने कहा नहीं, तुमने उसको धोखा दिया। धोखा देने से वो राजी हो गया धोखे में आकर, तो उसके राजी होने से तुम्हारी कमाई हलाल नहीं हुई है। तो धोखा, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा किया है बातिल तरीकों का, उसको भी देख लीजिए। आपने दो चीजें बताई हैं असल में, एक जरर है और एक गरर है, ठीक है, और कुरान मजीद ने सूद बता दिया है, ठीक है। तो जरर का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, खा उसकी रजा से आप पहुंचा रहे हो, उसको बता के उसकी मालूमात में ला के आप उसका सत्यानाश कर रहे हैं, वो राजी है, ठीक है, यही हल है जी, इसके सिवा कोई हल नहीं है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ जी, इतने में ये सौदा आया है। तब आपने क्या किया, नुकसान पहुंचाया है। नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है कि उसने आपको 10 रुपए दिए हैं, तो 10 रुपए की वर्थ की चीज उसको मिलनी चाहिए, 10 रुपए की जो वर्थ है उसके मुताबिक उसको चीज मिलनी चाहिए। अगर आपने 10 रुपए की चीज 500 रुपए में बेची है तो आपने उसको 490 रुपए का नुकसान पहुंचाया है, समझ गए। अपना प्रॉफिट डाल लीजिए, 10 रुपए के ऊपर 2 रुपए डाल लीजिए, ठीक है, तो वो जायज हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने किसी दूसरे बाजार से लाकर उसको फराम किया, आप दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, तो ठीक है, आप प्रॉफिट लेने का हक रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट 450 रुपए नहीं होता, एक खास रेशो से देना है जिसमें ये असूल कायम रहे कि 10 रुपए की वर्थ मैंने उसको दी है, 500 रुपए की वर्थ, 500 रुपए की वैल्यू के मुताबिक मैंने उसको चीज दे दी है। ये जब तक कायम है तो आपने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब आपने उसको ऐसी चीज दे दी है जो उसकी पैसे की वैल्यू के मुताबिक नहीं है, तो आपने उसको नुकसान पहुंचाया। दूसरा असूल गरर है कि आपने उसको धोखा दिया है, फरेब दिया है, गच्चा दिया है। तो जरर में सारी चीजें आ जाएंगी, रिश्वत हो गई, चोरी हो गई, चकारी हो गई, पैसा छीन लेना हो गया, ज़बरदस्ती बटोर लेना हो गया, ये सारी चीज़ें, गसब करना हो गया, ये सारी चीज़ें जरर में आ जाएंगी। गरर का मतलब है कि वो बेचारा धोखे में है कि आप मेरे साथ सही सौदा कर रहे हैं और आपने, तो ये गरर हो जाएगा। तो जिसमें धोखा दे रहे हैं आप, उसको ट्रांस में लाकर कोई चीज़ें कर रहे हैं, नशा पिला के कोई चीज़ें कर रहे हैं, ये सारे गरर हो जाएंगे। सूद से आप वाकिफ हैं, तो ये तीसरा जो है चीज़। अब जितनी आपने मिसालें दी हैं अपनी ज़िंदगी में, बै की बहुत सारी किस्में थी, वो सारी की सारी ज़रर और गरर के अंदर आती। तो गोया ये दो असूल हैं बुनियादी, सूद में भी असल में धोखा दे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं हम उसको, तो सूद भी इसी में आएगा, लेकिन चूंकि सूद अलग से बयान करना अहमियत रखता है तो इसलिए मैंने कर दिया है। तो धोखा देना और नुकसान पहुंचाना, ज़रर और गरर, ज़रर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, गरर नहीं होता, तो ज़रर और गरर, ये दो असूल याद रखिए कि जिस जिस सौदे में आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी उसके दी हुई कीमत की वर्थ के मुताबिक आप उसको चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और गरर का मतलब क्या है कि आप उसको तो राजी कर लिया आपने, लेकिन हकीकत में आप धोखा दे रहे हैं उसको। तो अब उसने मुझे कहा कि मैं तो उसको राजी था जी, बड़ा खुश खुश गया है, मैंने उसको दे दी 10 रुपए की चीज 500 रुपए में, तो ये गरर के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये भी नाजायज हो जाएगा। तो तजारत अंतराजिन का मतलब है कि नफे वाली तजारत जो एक दूसरे की मर्जी से हो रही है। यहां अल्लाह तआला ने एक चीज बयान कर दी है, बाकी हमारे फहम पे छोड़ दिया है, क्योंकि एक जायज चीज को बयान कर दे तो बाकी सारी चीजें जायज हो जाएंगी। तो मिसाल के तौर पर मैं अब आपके घर गया, आपने मुझे चाय पिलाई, अपनी मर्जी से पिलाई, तो मेरे लिए जायज होगी, खाना खिलाया जायज होगी। ये चीजें दोस्ती में, आप चले गए खुद मांग लिया, भूख लगी यार कुछ खिला दो, उसने दे दिया जो कुछ आपको जायज है, लेकिन वो उधर कमरे में गया, आपने जाके फ्रिज खोल के खा ली, तो ये काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी रजा से जो आप खा रहे हैं, उसकी मर्जी से जो खा रहे हैं, वो आपके लिए जायज है, लेकिन किसी पर बोझ नहीं बन जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि मेहमान बनकर जाके बैठ गए हैं, 6 महीने से निकल नहीं रहे, तो ये भी ज़रर हो जाएगा। वला तक्तलू अनफुसकुम, और एक दूसरे को कत्ल ना करना, ये मैं वजाहत कर चुका हूँ सादा तर्जमा होगा कि अपने आप को कत्ल ना करो, अपनी जानों को कत्ल ना करो। जब हम कहते हैं अपनी जानों को कत्ल ना करो, तो मतलब एक दूसरे को कत्ल ना करो। अब ये अजीब बात है कि माल के साथ जानों को कत्ल करने को जोड़ दिया अल्लाह ताला, क्योंकि बाज माल के बटोरने के अमाल भी कत्ल करने जैसे ही होते हैं। आपने एक बेवा का घर छीन लिया, उसको धक्के देकर निकाल दिए, तो मौत से छोटी चीज तो नहीं है, तो कत्ल करना ही है। और माल की वजह से भी कत्ल होते हैं। हमारे अपने देश में मैंने देखा है कि 10 रुपए के लिए भी गोली मार दी गई। वो गाहक 10 रुपए का सौदा लेना है, नहीं दे रहा, वो कहता कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, दुकानदार ने गोली मार डाली उसको। बाप को कत्ल कर दिया विरासत हासिल करने के लिए, भाई को मार डाला ये जमीनें छीनने के लिए। तो इसलिए इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो फरमाया वला तक्तुलु अनफुसकुम, तो माल कमाने के लिए जान भी नहीं लेनी। एक मजमून सियाक व सबाक की वजह से ये बन जाएगा। एक मजमून ये रहेगा कि बस कत्ल करना मना है, और दूसरा मजमून ये बन जाएगा कि माल की खातर, पैसे की खातर एक दूसरे को कत्ल ना करो। तो इसमें दो कबीरा गुनाह इकट्ठे हो जाएंगे। आपने बातिल तरीके से माल खाने का इंतजाम कर लिया कत्ल करके, समझ गए, तो ये चीज भी मना हो जाएगी। तो ऐ ईमान वालों, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। सिर्फ इस सूरत में तुम एक दूसरे का माल खा सकते हो कि राजी बेरजा तजारत हो रही है, और ना माल कमाने के लिए किसी को कत्ल करो। वैसे भी कत्ल मना है, और इसके लिए तो और शदीद मना हो जाएगा। इन अल्लाह काना बेकुम रहीमा, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। ये अब कानून की जो यतूबों का मैंने तर्जमा किया है, किसी और ने नहीं किया, इसलिए उसकी वजाहत में एक और दलील दे रहा हूँ। यतूबा अलैकुम में जो बात थी वही अब इन अल्लाह काना बेकुम रहीमा, कि अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे कवानीन दे रहा है हदायत के लिए, दुनिया में फ़ायदे के लिए, आखरत में कामयाबी के लिए। तो इसलिए रहीम आ गया है कि अल्लाह ताला ये कवानीन दे रहा है अपनी रहमत की वजह से। दूसरा पहलू इसमें यह है कि जितने कवानीन पीछे से अभी तक आए हैं सूरह निसा में, यतीमों के मसले से लेकर एक दूसरे का माल खाने, ये खुद हमारे दरमियान में एक शफकत का माहौल पैदा करेगा कि जब हम यतीमों का ख्याल रख रहे होंगे, बेवाओं का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी बीवियों का ख्याल रख रहे होंगे, विरासत सही तकसीम कर रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के लिए शफीक बन रहे होंगे। तो शफकत का मूजब भी है ये कवानीन। तो खुदा की रहमत दो मानी में हो गई, एक ये कि मैं जो कवानीन दे रहा हूँ वो मेरी रहमत है, मैं तुम्हें अच्छे कवानीन दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी जानें महफूज हों, तुम्हारे माल महफूज हों, और दूसरा इसलिए कि तुम्हारे अंदर भी एक दूसरे के लिए शफकत पैदा हो, तुम यतीमों के लिए शफीक बन जाओ, यतीम तुम्हारे आसरे को लेना पसंद करें। तो तुम एक कुरान में जो दूसरी जगह बयान किया कि रहमा उबैना हूँ, वो आपस में शफीक है, मेहरबान है, वो फ़ज़ा पैदा हो जाए। तो ये दो पहलू हैं इसके, इन अल्लाह काना बिकुम रहीमा के, कि कवानीन अल्लाह ताला रहमत वाले दे रहे हैं, और दूसरा ये कि तुम्हारे अंदर शफकत और मेहरबानी एक दूसरे के लिए पैदा हो जाए। तो ज़ाहरी कवानीन जो है वो भी शफकत पैदा कर देते, यानी एक आदमी ज़ाहरी तौर पर अमल कर रहा है इसके ऊपर कि मेरा माल बातिल तरीके से नहीं खा रहा, तो वो मेरे लिए शफीक आदमी है, खा वो आखरत के लिए कर रहा हो या ना कर रहा हो, ईमान की वजह से कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो सिर्फ बातिल तरीके से माल नहीं खाता मेरा, तो मेरे लिए बड़ा मेहरबान आदमी है, मैं उससे महफूज हूँ, मेरा माल महफूज है उससे। इसी तरह कोई मेरी जान का एहतराम करता है सिर्फ इसलिए कि ठीक है, तो तब भी तो कवानीन बाज़ ज़ाहरी तौर पर भी अगर अमल किया जाए, मसलन हम जितने भी हुकूमत के कवानीन होते हैं उसको तो हम ज़ाहरी तौर पर ले रहे होते हैं, तो उन पर अमल करना भी मुआशरे के लिए सहूलत, इत्मीनान और रहमत का, शफकत का बायस होता है। अगरचे मैं पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि मुल्की कवानीन भी शरई बन जाते हैं इस वजह से कि हम एक मुआहदे में हैं अपनी हुकूमत के साथ कि हम हुकूमत की पैरवी करेंगे, तो इसलिए इनडायरेक्ट वो भी शरीयत का जगह ले लेते हैं क्योंकि हमने वादा कर रखा होता है, तो वादे को पूरा करना शरीयत का हुक्म है। फरमाया वमन यफअल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा फसौफ़ा नुस्लीही नारा, तो जिसने ये सारे काम किए उद्वान के तौर पर और जुल्म के तौर पर, तो उसको अनकरीब हम आग में डाल देंगे। वकाना ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है। پچھلی بات تو واضح ہے، رحیمہ کے ساتھ اس کو ذرا کمپیئر کیجئے۔ قرآن مجید اس طرح کی بہت کمال کی چیزیں کر دیتا ہے کہ اوپر ابھی ایک جملے پہلے بتایا ان اللہ کانا بکم رحیمہ، اب کہہ رہے ہیں میں آگ میں ڈال دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت ناانصافی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظلم اور عدوان کی ضرور سزا دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی رحمت ظلم اور عدوان کو سزا نہ دے۔ تو یہ مقامات بہت اہم ہوتے ہیں، انہی جگہوں پہ خدا کی صفات، اسی کو اللہ تعالیٰ تصریف آیات کہتے ہیں کہ ایک ماحول میں رحمت لے کر آئیں گے، دوسرا شیڈ واضح کر دیں گے، دوسرے سیاق میں رحمت کا ماحول لے کر آئیں گے، رحمت کا لفظ لے کر آئیں گے تو وہاں ایک دوسرا شیڈ واضح کر دیں گے۔ تو رحمت کا اب یہاں شیڈ جو واضح ہو رہا ہے کہ ظلم اور عدوان میں معافی نہیں ہونی، ظلم و عدوان میں معافی نہیں ہوگی بلکہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جو پیچھے جملہ ہے اس کو سمجھ لیجیے، عدوان اور ظلم۔ عدوان حدود سے تجاوز کو کہتے ہیں اور ظلم زبردستی کو کہتے ہیں۔ تو ہم حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ظلم نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات، لیکن حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک ایسا حق کا مطالبہ کر دیا جس میں حق اس کا بنتا تھا، لیکن ہم نے کوئی چال چل کے، کوئی پلاننگ کر کے، کوئی بظاہر بڑی محبت، بڑی ہمدردی، بڑا سب کچھ ہم کر رہے ہیں، کوئی ظلم نہیں کر رہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہے، کوئی زبردستی نہیں ہے بس، لیکن حدود کا تجاوز ہو رہا ہے۔ پیسے آپ کے تھے، مجھے پتا ہے، دو تین دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا کنسٹرکشن کا کام ہے تو کوئی 20 لاکھ روپے کلائنٹ کی طرف سے زیادہ آ گئے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں پیسے دیتے ہوئے۔ تو اب جو 20 لاکھ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ان کو مل رہے ہیں، اضافی مل رہے ہیں، جو کنسٹرکشن کا وعلیکم السلام، کنسٹرکشن کا کام کرنے والے جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں مل رہے ہیں، لیکن یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں حسابات میں اور پیمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 20 لاکھ روپے زیادہ آ چکے ہیں ایک پروجیکٹ میں، تو یہ عدوان کے طریقے پہ آ رہے ہیں، ظلم کے طریقے پر نہیں آ رہے۔ ظلم یہ تھا کہ یہ زبردستی چھین لیں یا جا کے۔ تو جب آپ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اخلاقی حدود، قانون کی حدود، تو یہ عدوان ہے۔ اور ظلم کا مطلب ہے زبردستی چھین لیا، غصب کر لیا، گھر سے یتیموں کو نکال دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، یہ ظلم ہے۔ تو دو الگ الگ طرح کے جرم ہیں، ایک میں ہم صرف حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، شریعت توڑ رہے ہوتے ہیں، اخلاق توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کہہ رہی ہوتی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے کام، کیا بات ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن ہم جیسے ہمارے بعض سیاستدانوں کے بارے میں کہتے تو کام کرتے ہیں تو لیتے بھی ہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، کاغذات میں ہیرا پھیری، حسابات میں اس طرح کی ہیرا پھیری ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے ان کو۔ تو یہ عدوان ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ آپ زبردستی جھینا چپٹی کر کے گن پوائنٹ پہ گھر سے نکال دیا، آپ قتل کر دیا کسی کو، یہ ظلم ہے۔ تو پیچھے اب تقتلو انفسکم، قتل کر کے کسی کا مال بٹورنا، یہ ظلم ہو جائے گا، اور باطل طریقوں سے کیا ہوگا، یہ عدوان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو پہلو ہیں کسی بھی برے کام کے۔ پہلی چیز جو ہے یہ گناہ بنتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے یہ بغاوت بنتی ہے، بغی بنتی ہے۔ اور بغی جو ہے یہ اس کی سزا فساد فی الارض ہوتی ہے، فساد فی الارض والی، ہرابہ والی، اور اس کی سزا عام جرائم جیسی ہوتی ہے، چوری کرے گا تو چوری ہو جائے گی، چوری کرنے والا بھی ظلم عدوان، ظلم نہیں کر رہا ہوتا، عدوان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مال چوری چھپے بغیر آپ کو پتہ چلے لے کر چلا جاتا ہے، تو کیا ہو گیا، عدوان ہوا، حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اپنا مال کی طرح آپ کے مال کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ دونوں کام، باطل طریقے سے مال کھانا یا جان لینا کسی کی، یہ عدوان اور ظلم کے اصول پر کیا، تو اس کو ہم لازماً آگ میں ڈالیں گے۔ یعنی یہ خیال نہ کریں کہ جس نے چوری چوری چھپے چوری کی ہے، کوئی ظلم نہیں کیا، صرف پیسہ لے کر آ گیا ہے تو وہ بچ جائے گا، نہیں، دونوں کو سزا ملے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مال باطل طریقے سے کھانے پر دوزخ میں ڈالنے کی سزا دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جس قانون کے ساتھ دوزخ کی سزا بیان ہو جائے وہ سمجھیے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو قتل کے بھی معنی دو معنی واضح کیے ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، اور دو میجر اصول بھی بیان کر دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ضرر اور غرر کا۔ اور پھر قتل کا یہ پہلو کہ مال بٹورنے کے لیے قتل کرنا یا ویسے جان لینے کے لیے قتل کرنا، یہ دونوں گناہ ہو جائیں گے. گناہوں کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عدوان کے ٹائپ کا اور ایک ظلم کے ٹائپ کا. عدوان کے ٹائپ سادہ گناہ ہیں، اور ظلم جو ہے وہ اس میں وائلنس آ جاتا ہے، اس میں زبردستی آ جاتی ہے. تو دونوں کے لیے دوزخ کی سزا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے عدوان کے طریقے پر کیا اس کو بھی دوزخ میں جانا ہوگا، اور جس نے ظلم کے طریقے پر کیا اس کو بھی دوزخ میں جانا ہوگا. اور دوزخ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگے خوشخبری ہے، ٹائم ہمارے پاس ہو چکا ہے، تو وہ صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تفسیر اس کی آگے دیکھ لیں گے. ان تجتنبوا، کیونکہ یہ سخت آیت ہے تو اس کے بعد بشارت ہو جائے تو اچھا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں ان کے کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو مٹا ڈالیں گے، اور تمہیں پھر عزت والے مقام پہ لے جائیں گے. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں، وقت ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.